आकाश ने लैपटॉप की स्क्रीन आस्तिक की तरफ कर दी और आस्तिक ने देखा कि ये सारे मैसेज एक के बाद एक लॉक किए गए हैं। एक मैसेज भेजने वाले की तरफ से है और दूसरा पढ़ने वाले की तरफ से, और जो मैसेज भेजने वाले का लोकेशन है वो मुंबई से बाहर का दिखाया जा रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक शो नहीं हो रही है, लेकिन मैसेज जहां मिला है वो लोकेशन आस्तिक के उस मेंशन का है जहां पर उसके पेरेंट्स रहते हैं, यानी कि पुष्कर रायचंद के घर का। अर्जुन हैरानी से आकाश की तरफ देखते हुए कहा, आकाश, ये मैसेज आने का सिलसिला कब से शुरू हुआ है? मतलब कब से इस तरीके के षड्यंत्र को अनजान पीना की डेट सामने आई है, कुछ पता चला? आकाश अपने दूसरे लैपटॉप पर कुछ करता है और कहता है, जी सर, इसकी एक एग्जैक्ट डेट मेरे सामने आई है, जब दोनों फोन आपस में कनेक्ट होते हैं और दोनों फोन से आपस में मैसेज शेयर होते हैं। ये डेट है 25 फरवरी। जैसे ही आकाश ने ये डेट बताई, आस्तिक की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोन जब से सर्विलेंस पर आए हैं और जब से कनेक्ट हुए हैं वो तारीख 25 फरवरी है? तुम श्योर हो? आकाश ने हमेशा लाते हुए कहा, जी सर, मैं पूरी तरह से सही हूँ। ये देखिए, ये फोन नंबर 1 और ये फोन नंबर 2, इन्हें खरीदा और इनके अंदर सिम इसी तारीख को डाला गया है, इसीलिए ये दोनों नंबर आपस में कनेक्ट हैं। वैसे इस डेट में कोई खास बात है क्या? आस्तिक ने हमेशा हिलाते हुए अर्जुन को देखकर कहा, बहुत खास बात है, इस डेट में ये मेरी शादी की तारीख है। जिस दिन मेरी अरुणिमा से शादी हुई थी वो तारीख 25 फरवरी ही थी। इसका मतलब ये षड्यंत्र तब से ही दिया जा रहा है। आस्तिक की बात सुनकर आकाश और अर्जुन दोनों हैरान हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा, आस्तिक, ये कोई सीधी साधी चाल नहीं है, बल्कि कोई तगड़ा गेम प्लान है, वरना तुम्हारी शादी से लेकर तुम्हारी पहली सालगिरह तक कुछ भी नॉर्मल नहीं था। एक एक चीज सोच समझकर चली गई है, एक एक चाल सोच समझकर रखी गई है, जिसमें तुम और अरुणिमा फंसते जा रहे हो। आस्तिक का गुस्सा अब बढ़ गया था। उसने गुस्से में उन सारे मैसेज की तरफ देखा जो मुंबई के बाहर से आए थे। उसमें साफ साफ लिखा गया था, ये काम बहुत सफाई से होना चाहिए। आस्तिक की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए हम एक एक करके चालें शुरू करेंगे, क्योंकि आस्तिक रायचंद को अपनी रेप्यूटेशन से बहुत प्यार है और वो अपनी रेप्यूटेशन को अरुणिमा जैसी लड़की के लिए कभी भी बर्बाद नहीं होने देगा। इसीलिए बहुत आसान तरीका है आस्तिक की रेप्यूटेशन को खराब करने के लिए, लेकिन इसके लिए सही वक्त और सही मौके की जरूरत है। और वो सही वक्त और सही मौका कब आएगा ये तो मुझे बताओगे। और जिसने इस मैसेज को पढ़कर रिप्लाई किया था उसका मैसेज कुछ इस तरीके से था, हाँ, मैं पता हूँ कि ये सब बहुत मुश्किल हो सकता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाया है ताकि इस मुश्किल काम को अंजाम दे सकूँ। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी वो दिन और समय बताऊंगा जब हम आस्तिक की रेप्यूटेशन को धूल में मिला देंगे। अरुणिमा जैसी बेवकूफ लड़की का सहारा लेकर हम आस्तिक को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। आस्तिक इन दोनों मैसेज को पढ़ता है और गुस्से में उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। कोई है उसके आसपास जो उसके बारे में इतना तगड़ा गेम प्लान कर रहा है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ। होता भी कैसे, उसका सारा ध्यान सिर्फ अरुणिमा के ऊपर ही था, क्योंकि मिस्टर रायचंद ने उसे एक जिम्मेदारी दी थी और वो उसके लिए अरुणिमा के ऊपर प्रेशर बना रहा था, पर उसे नहीं पता था कि कोई है आसपास जो उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। आस्तिक अपना गुस्सा काबू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आस्तिक, शांत रहो, देखो आकाश कोशिश कर रहा है ना नंबर निकालने की, मैसेज हाथ लग गए हैं, नंबर भी हाथ लग जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तुम थोड़ा सा शांत रहो। आस्तिक ने गुस्से में साइड में टेबल पर रखे हुए ड्रिंक के ग्लास को उठाया और उसे एक सांस में ही पी लिया, क्योंकि वो सच में इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे इस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो बस एक बार उस इंसान का नाम जानना चाहता था जिसने ये सारी हरकत की है। वो इंसान को सच में मौत के घाट उतार देगा। आकाश अपने लैपटॉप पर बार बार कुछ डिलीट करता, फिर कुछ पेस्ट करता और ऐसे करते करते कई बार उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल रहे थे, पर तभी उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो खुश होते हुए कहता है, मिल गया मिस्टर रायचंद, नंबर मिल गया। आस्तिक के चेहरे पर भी चमक आ गई, लेकिन आकाश ने अफसोस के साथ कहा, लेकिन ये सिर्फ एक ही नंबर है जिसने मैसेज किया है। जिसका मैसेज रिसीव हुआ है उसका नंबर हम अभी भी तलाश नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो नंबर बहुत सारे सिक्योरिटी लॉक से सुरक्षित है, इसलिए वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मुंबई के बाहर से जिसने मैसेज किया है उसका नंबर मुझे मिल गया है, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। आस्तिक ने जल्दी से कहा, हाँ तो सोच क्या रहे हो, दिखाओ मुझे, किसका नंबर है ये, किसने किया है ये सब। आकाश ने तेजी से लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ किया और फिर स्क्रीन आस्तिक की तरफ घुमा दी। आस्तिक ने नंबर देखा, जो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा था उसे देखकर आस्तिक हैरान रह गया। ये नंबर उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। ऐसा लग रहा था कि इस नंबर पर उसने कई बार बात की है या किसी तरह का कनेक्शन रहा था, लेकिन दिमाग में कुछ साफ नहीं आ रहा था। उसे इतना उलझन में देखकर अर्जुन ने पूछा, आस्तिक, तुम जानते हो ये नंबर किसका है? आस्तिक ने जवाब दिया, कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है, लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं अपने मोबाइल में चेक करता हूँ, अगर ये नंबर मेरी कॉल हिस्ट्री में हुआ तो जरूर पता चल जाएगा। आस्तिक ने अपना फोन निकाला और उसमें कुछ चेक करने लगा। धीरे धीरे जैसे ही वो नंबर फीड कर रहा था उसके सामने एक नाम उभरने लगा और जैसे ही उसने आखिरी अंक डाला, स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हुआ। आस्तिक की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वो झट से खड़ा हो गया। उसके साथ अर्जुन भी खड़ा हो गया और घबरा कर पूछा, क्या हुआ, तुम्हें पता चल गया ये नंबर किसका है? आस्तिक ने गुस्से में फोन की स्क्रीन ऑफ की, फोन को जेब में डाला, फिर टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन मुझे अभी जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। फिर उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, आकाश थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। इतना कहकर आस्तिक तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उसे इस तरह जाता देख अर्जुन और आकाश दोनों हैरान रह गए। अभी तक तो वो नंबर के लिए इतना बेताब था और अब जब नंबर मिल गया तो यूं चला गया जैसे उसके चेहरे पर कोई बहुत भारी बोझ आ गया हो। कमरे से निकलते ही वो अपनी गाड़ी में बैठा और गहरी सांस लेने लगा। वो खुद को बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। एक बार फिर उसने फोन की स्क्रीन ऑन की, उसकी नजर उस नंबर पर गई और नीचे जो नाम लिखा था उसे देखकर आस्तिक की मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। लावण्या बजाज।